प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवे वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया, छोड़ा जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया। दुनिया मौत है, जिंदगी मसीह है। दुनिया मौत है, जिंदगी मसीह है। यही सच है, पहचान लिया। छोड़ा जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया। चलते चलते दुनिया की राहों में जाना नहीं, अब अंत कहाँ। चलते चलते दुनिया की राहों में जाना नहीं, अब अंत कहाँ। जब से यीशु की राह चला मैं, मंजिल को पहचान लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैं और मसीह को थाम लिया। मिले गुनाहों की इधर उधर। रुक के जरा तुम देखो यारो, खेल गुनाहों के इधर उधर। बच पाएगा इनसे वो जिसने यीशु का नाम लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को है पहचान लिया। छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया।
छोड़ा है जब से दुनिया को मैंने और मसीह को थाम लिया। प्रिय श्रोता, इस सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आशा है कि आप प्रभु के अनुग्रह से सकुशल हैं और आज के सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सो आइए आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हुए आज भी हम दूसरा ग्रंथियों उसके 11वें अध्याय को जारी रखेंगे। आज हम 16वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। आज का अध्ययन विषय होगा अपनी विपत्तियों के प्रति पौलुस का गर्व। सो आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करें। परंतु कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हमारे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके चरणों में झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने एक बार फिर ये सुअवसर हमें दिया है कि हम आपके जीवित वचन बाइबल का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि इस सामर्थी और रहस्यपूर्ण वचन को समझने और ग्रहण करने की सामर्थ हमें प्रदान करें। यदि कोई आज हमारे बीच में बीमार है या किसी समस्या से पीड़ित है तो प्रभु आप उन्हें छूकर चंगाई दें, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि आपने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है जिससे हमें शांति व चंगाई मिल सकती है। प्रभु जी, हमारी यह विनती है कि प्रत्येक श्रोता भाई बहन को आपके वचन से पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाकर उन्हें अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करें ताकि अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें, क्योंकि ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो प्रिय श्रोता मित्र, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस स्वयं को मूर्ख अर्थात बुद्धिहीन के नाम से संबोधित करते हैं। सेवक तब मूर्ख कहलाता है जब वह सुसमाचार की सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में उलझ जाता है। आधुनिक युग में शैतान सेवकों को इस प्रकार की मूर्खताएं करने के लिए बहुत प्रेरित करता है। पौलुस ने स्वयं को मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि वह सुसमाचार की सेवा छोड़कर स्वयं को प्रेरित प्रमाणित करने में लग गए। ये वास्तव में समय नष्ट करना था, परंतु ऐसा करना कलीसिया के हित में था। पौलुस की इसमें कोई रुचि नहीं थी, परंतु समय की मांग को देखते हुए उन्हें ऐसा करना पड़ा। फिर भी वो स्वयं को मूर्ख के नाम से संबोधित करते हैं। श्रोता मित्र, हमने ये भी सीखा कि हमें मसीह की भक्ति की सरलता की पवित्रता को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, वरन प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। 13 से 15 पदों में पौलुस ने हमारे समक्ष कलीसिया के भीतर शैतान की गतिविधियों का एक रहस्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया। संभवतः आप में से अनेक लोग इन बातों से परिचित ना हों और अज्ञानता के कारण इस प्रकार के झूठे शिक्षक तथा झूठे सेवकों के द्वारा भरमाए जाते रहे हों। पौलुस ने बताया कि जिस प्रकार शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करके चुने हुओं को भरमाता है, उसी प्रकार उसके सेवक व कार्यकर्ता भी धार्मिकता के सेवकों का रूप धारण करके भरमाते हैं और अनेक निर्बल विश्वासियों को विनाश की ओर ले जाते हैं। शैतान के सेवक अपनी ही प्रशंसा करते हैं। श्रोता मित्र, ये अत्यंत शोचनीय बात है कि शैतान के भी सेवक और प्रेरित होते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये तो रही हमारे पिछले अध्ययन की बात, अब आज हम इससे आगे के वृत्तांत को देखेंगे। आइए देखें कि आज प्रभु जी हमें कौन सा नवीन सत्य बताना चाहते हैं और कौन सी विशेष शिक्षा व प्रतिज्ञा देना चाहते हैं। कुरंथियों के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसके 16वें पद से लेकर 29वें पद तक हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं फिर कहता हूं कि कोई मुझे मूर्ख ना समझे, परंतु यदि तुम ऐसा समझते हो तो मुझे मूर्ख समझकर ही ग्रहण करो कि मैं भी कुछ गर्व कर सकूं। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह प्रभु के इच्छा अनुसार नहीं, परंतु मूर्ख के सदृश निसंकोच होकर गर्व से कह रहा हूं। जबकि अनेक लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी क्यों ना करूं। तुम इतने बुद्धिमान हो कि आनंद से मूर्खों की सह लेते हो, क्योंकि जब कोई तुम्हें दास बना लेता है या बर्बाद कर देता है या तुमसे अनुचित लाभ उठाता है या अपने को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी सह लेते हो। मैं लज्जित होकर ये कहता हूं कि हम एक दूसरे से तुलना करके निर्बल हो गए हैं, परंतु जिस किसी बात में कोई साहस रखता है, मैं मूर्खता से कहता हूं तो मैं भी उतना ही साहस रखता हूं। क्या वह ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वह ही इसराइली है? मैं भी हूं। क्या वह ही इब्राहिम के वंशज हैं? मैं भी हूं। क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल की तरह कहता हूं मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार बंदी होने में, अनगिनत बार पीटे जाने में, बहुधा मृत्यु के जोखिम में, मैंने 5 बार यहूदियों से 39-39 कोड़े खाए, 3 बार बैंतों से पीटा गया, 1 बार मेरा पथराव हुआ, 3 बार मैं जहाजी दुर्घटनाओं में फंसा, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपने देशवासियों के खतरों में, गैर यहूदियों के खतरों में, नगरों के खतरों में, जंगल के खतरों में, समुद्र के खतरों में तथा झूठे भाइयों के मध्य होने वाले खतरों में रहा। मैंने परिश्रम और कष्ट में, रात रात भर जागने में, भूख और प्यास में, अक्सर निराहार रहने में, ठंड में और उघाड़े रहने में दिन बिताए। इन भारी बातों के अतिरिक्त मुझे प्रतिदिन कलीसिया की चिंता दबाए रहती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके पाप में फंसने से मैं व्याकुल नहीं होता। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर आशीष दे। श्रोता, पौलुस द्वारा अपनी सेवकाई की तुलना कुरिन्थियों की कलीसिया में पाए जाने वाले झूठे सेवकों से करना वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि वास्तव में तो मैं मूर्ख नहीं हूं, परंतु यदि तुम मेरे इस कार्य को मूर्खता समझते हो तो मुझे मूर्ख ही समझकर ग्रहण कर लो, क्योंकि तुम मूर्खों की आनंद से सह लेते हो जैसे कि तुम सह भी रहे हो। ये बात वे झूठे प्रेरितों की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं। 17वें पद में वो कहते हैं कि यद्यपि मैं तुम्हारी दृष्टि में मूर्ख हूं, परंतु मेरी मूर्खता प्रभु की इच्छा अनुसार नहीं है। परंतु फिर भी ये मूर्खता कलीसिया के हित में है, अर्थात कलीसिया को झूठे शिक्षकों तथा शैतान की युक्तियों से बचाने के लिए है। 18वें और 19वें पद में वो एक पवित्र व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यह चौथे पद के समान व्यंगात्मक पद है। वहां ये झूठे शिक्षकों के प्रति उनकी उस सहनशीलता से संबोधित था जिसके लिए वे तत्पर थे, अर्थात वे उन झूठे शिक्षकों व सेवकों की झूठी शिक्षा को बिना किसी आपत्ति के सहने को तैयार थे। परंतु 19वें पद में पौलुस उस अशोभनीय व्यवहार की ओर संकेत कर रहे हैं जो उन झूठे शिक्षकों व सेवकों द्वारा उनके साथ किया जा रहा था और वे उसे स्वेच्छा से सह रहे थे। ये झूठे सेवक अपनी प्रशंसा स्वयं करने के कारण मूर्ख घोषित किए जा चुके हैं, परंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि संत पौलुस को भी अपनी सेवकाई के विषय में तथा अपनी प्रेरिताई के विषय में प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ गई है। परंतु पौलुस का उद्देश्य अपनी प्रशंसा करना नहीं है। आइए इन झूठे सेवकों के व्यवहार की झलक देखें। 20वें पद को हम एक बार फिर से पढ़ लेंगे। आप अपनी बाइबल में ध्यान से देखें, लिखा है, क्योंकि जब कोई तुम्हें दास बना लेता है या बर्बाद कर देता है या तुमसे अनुचित लाभ उठाता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी सह लेते हो। दास बनने से पौलुस का तात्पर्य है मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों तथा निर्देशाज्ञों का पालन करना। संत पौलुस गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और 1 पद में बता चुके हैं कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। पहला कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय और उसके 23वें पद में उन्होंने बताया है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, किसी मनुष्य के दास ना बनो। परंतु कुरिन्थियों के विश्वासियों ने मसीह की स्वतंत्रता को त्याग कर स्वयं ही झूठे शिक्षकों व सेवकों की दासता को स्वीकार कर लिया था। ऐसी दशा हम आज भी कलीसिया के मध्य देखते हैं। अनेक पासबान तथा कलीसिया के अगुए मसीह की स्वतंत्र मंडली को अपने नियमों व धर्म विधियों का दास बना रहे हैं। मित्र, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको प्रभु के वचन को पढ़ने तथा उसकी गंभीरता के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है। मसीह यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर हमें धर्म कांडों से स्वतंत्र किया है। आइए हम 20वें पद को एक बार फिर से पढ़ लें। आप अपनी बाइबल में देखें, लिखा है, क्योंकि जब कोई तुम्हें दास बना लेता है या बर्बाद कर देता है या तुमसे अनुचित लाभ उठाता है या अपने को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम उसकी सह लेते हो। यहां मुंह पर थप्पड़ मारने से पौलुस का तात्पर्य शारीरिक दंड से है। वह कहते हैं कि वह तुम्हें मार पीट कर अशोभनीय व्यवहार करके तुम्हें अपना दास बना रहे हैं और तुम उनकी सहते हो, परंतु तुम हमारे प्रेम और मसीह के सुसमाचार की सरलता व पवित्रता को तुच्छ समझते हो। श्रोता मित्र, अब हम उस खंड पर आ रहे हैं जिस खंड में पौलुस एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में अपने स्वयं के जीवन के अनुभवों के विषय में बता रहे हैं। 21वें पद में पौलुस कहते हैं कि यदि तुम शरीर के भाव से झूठे सेवकों को उत्तम समझ रहे हो तो मैं शरीर के भाव से भी किसी से कम नहीं हूं। मैं अपनी वंशावली को भी प्रमाणित कर सकता हूं। आइए हम 22वें पद को एक बार फिर से पढ़ें। यहां क्या लिखा है, क्या वह ही इब्रानी है, मैं भी हूं। क्या वह ही इसराइली है, मैं भी हूं। क्या वह ही इब्राहिम के वंशज हैं, मैं भी हूं। ये वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह झूठे शिक्षक उन गैर यहूदी मसीहियों पर अपना बड़प्पन जताते थे। वह कहते थे कि हम यहूदी हैं और श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, जो हम सिखाएं तुम उसका अनुसरण करो। और इस प्रकार वह उन अन्य जाति विश्वासियों को यहूदी शिक्षाओं पर चलने तथा उनके नियमों का पालन करने को विवश करते थे। परंतु पौलुस की ऐसी शिक्षा नहीं थी। पौलुस आत्मिक बातों पर ध्यान देते थे, शारीरिक बातों पर नहीं। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 28 और 29वें पदों में उन्होंने बताया कि खतना वही है जो आत्मा के द्वारा हृदय का है। उसकी प्रशंसा परमेश्वर की ओर से होती है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 28 और 29 पदों में उन्होंने बताया कि तुम सब मसीह में एक हो, इसलिए इब्राहिम की संतान तथा प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। इस प्रकार पौलुस की शिक्षा उन झूठे शिक्षकों से भिन्न थी। ये आत्मिक थी, शारीरिक बातों पर निर्भर नहीं थी। ये वास्तव में पूर्ण स्वतंत्र जीवन की शिक्षा थी। आइए हम 23 और 24 पद को फिर से देख लें। यहां इस प्रकार लिखा है, क्या वह ही मसीह सेवक हैं? मैं पागल की तरह कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार बंदी होने में, अनगिनत बार पीटे जाने में, बहुधा मृत्यु के जोखिम में, मैंने 5 बार यहूदियों से 39 कोड़े खाए। इन पदों में संत पौलुस अपने शारीरिक कलेशों के विषय में बता रहे हैं। उस समय में यहूदियों का कोड़े मारने का ढंग यही था कि व्यक्ति जान से ना मारा जाए, वह 13 कोड़े एक और फिर 13 कोड़े दूसरी ओर मारते थे, यानी कि 13 × 3 = 39। पौलुस ने मसीह के सुसमाचार की खातिर इस प्रकार से 5 बार कोड़े खाए थे, इसलिए वो ये कहने का साहस कर सके कि मैं अपने बदन पर मसीह के दागों को लिए फिरता हूं। मित्रवर, यदि प्रभु यीशु मसीह कोई वास्तविकता नहीं थे तो फिर पौलुस क्यों उसके लिए इतना सताव सह रहे थे? इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। यदि वो वास्तविक हैं तो वास्तविकता को स्वीकार करने ही में आपका भला है। 25 से 27 पदों में वे अन्य शारीरिक कष्टों की चर्चा कर रहे हैं। श्रोता मित्र, हम में से कितने सेवक ऐसे हैं जो ये कहने का साहस कर सके कि हमने इनमें से कोई छोटे से छोटा क्लेश भी सुसमाचार के लिए सहा हो? यदि सहा है तो आप वास्तव में धन्य हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय और 13 से लेकर 15 पदों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग में एक महान प्रतिफल है। आइए हम इन पदों को पढ़ लें। आप निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय के हम 13 से लेकर 15 पदों तक पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, उसके पश्चात प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं कौन है और कहां से आए हुए हैं? मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, इस कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उन पर अपनी छाया करेगा। आइए अब हम देखें कि कुरंथियों की पत्री में इसके लिए क्या कहा गया है। आप निकाल लीजिए कुरंथियों की पत्री, यानी कुरंथियों की दूसरी पत्री और उसका 11वां अध्याय और उसके 28 और 29 पद। लिखा है, इन बाहरी बातों के अतिरिक्त मुझे प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता दबाए रहती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके पाप में फंसने से मैं व्याकुल नहीं होता। श्रोता, एक सच्चा सेवक, एक सच्चा पासबान अपनी कलीसिया के लिए ऐसी ही चिंता करता है। वो उनके लिए ऐसे ही आंसू बहाता है तथा अपनी कलीसिया के लिए ऐसे ही व्याकुल रहता है। सच्चा पासबान अपने लोगों के लिए उपवास सहित प्रार्थना करता है। वो कलीसिया की आत्मिक व शारीरिक उन्नति के लिए व्याकुल रहता है। पौलुस वास्तव में एक सच्चे प्रचारक और परमेश्वर के चुने हुए और बुलाए हुए सच्चे प्रेरित थे। इस प्रकार पौलुस परमेश्वर के एक सच्चे सेवक के रूप में कलीसिया के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आइए हम पढ़ें 11वें अध्याय के 30 से लेकर 33 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि मुझे घमंड करना ही है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूं। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता, जो सदैव धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दमिश्क में अतिरास राजा की ओर से, जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। तब टोकरी में बैठा कर शहर बना की एक खिड़की में से मुझे नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार मैं उसके हाथों में पड़ने से बच निकला। 32 और 33 पद में वह दमिश्क के अनुभव की चर्चा करते हैं। राजा अरितास चतुर्थ हेरोदीस अंतिपास का ससुर था, जिसने 9 ईस्वी पूर्व से सन 40 तक नबाती अरबों पर राज्य किया। शेमी शासक कैलीगुला ने दमिश्क का राज्य उसे सौंप दिया था, क्योंकि उस समय यह रोमी साम्राज्य में सम्मिलित था। श्रोता, टोकरे में बैठकर रस्सियों की सहायता से नगर से बाहर निकल जाना कैसा विचित्र अनुभव है! क्या वर्तमान समय में किसी सेवक ने ऐसा अनुभव किया है? मित्र, पौलुस का अनुभव मेरे और आपके अनुभव से भिन्न है। पौलुस को प्रचार करने के पश्चात अपनी जान बचाकर टोकरी में बैठकर चुपके से भागना पड़ा। मेरे मित्र, आज हमें प्रचार की समस्त सुविधाएं प्राप्त हैं, तो भी हम पौलुस जैसे कार्य करने में असफल हैं। पौलुस ने मसीह के लिए क्या क्या नहीं सहा। उसने हर दशा में और हर परिस्थिति में अपने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के हाथों में सौंप दिया। मेरे मित्र, आप अपने कष्टों व क्लेशों पर गर्व ना करें। पहले पौलुस के कष्टों के विषय में पढ़िए, तब देखिए कि उनकी तुलना में आपके कष्ट क्या हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम आपकी सेवा सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ कर सकें। प्रभु, तू हमें कर्तव्य निष्ठ बना, हमें सिखाएं कि हम केवल अपनी निर्बलताओं पर घमंड करें। प्रभु, आप हमें ऐसी सामर्थ और ऐसी शक्ति प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी विनती को ग्रहण करने की कृपा करें। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपके पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।